अमूल्य, मूल्य देने पर भी दुर्लभ वस्तु जैसे यश, विद्या। दुर्मूल्य, किसी वस्तु का इतना अधिक मूल्य कि उचित न कहा जाए, जैसे अकाल के समय अन्न को छुपाकर मनमानी कीमत लेना इत्यादि। असामान्य, जो गुण विशेष सभी प्राणियों में समान रूप से ना पाया जाए। असामान्य वस्तु इंद्रियों द्वारा देखी जानी जाती है। असाधारण, वह गुण या प्रतिभा जो किसी विशेष व्यक्ति में औरों से अधिक हो। अलौकिक, वह व्यक्ति, वस्तु या गुण जो लोक या समाज में सामान्यतः ना दिखाई पड़े। अस्वाभाविक, जो मानव प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हो। अविराम, अविराम इसका अर्थ निरंतर होता है, जैसे वह धावक अविराम दौड़ता रहा। अभिराम इसका अर्थ अच्छा लगाने वाला होता है, जैसे छोटे बच्चों की तुतली बातें अभिराम की अनुभूति कराती हैं। अस्त, अस्त इसका अर्थ डूबा हुआ होता है, जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अस्तु इसका अर्थ जो हो अथवा ऐसा ही सही है अथवा तो ठीक है होता है, जैसे अस्तु इस सिद्धांत को अब मान्यता दे गई है। अज्ञान, जैसे किसी बात की जानकारी ना हो या जानकारी का अवसर ना प्राप्त हो। मूर्ख, जिसमें किसी बात को सोचने की शक्ति ना हो, जिसकी बुद्धि सामान्य से बहुत कम हो, वह मूर्ख है। मूढ़, जिसमें बुद्धि ही ना हो। अवस्था, जीवन के बीते हुए काल को अवस्था कहते हैं। आयु, समस्त जीवन का समय आयु है। अभिज्ञता, अभिज्ञता किसी वस्तु या विषय की सामान्य जानकारी है। बहुदर्शिता, किसी विषय को अनेक दृष्टि से समझने की क्षमता। अबला, अबला वह स्त्री है जो बलहीन हो। निर्बला, वह स्त्री जो कमजोर हो, दुर्बल हो। अनिवार्य, जिसका निवारण करना संभव ना हो, जिसके बिना काम ना चल सके। आवश्यक, जिसे अवश्य होना चाहिए। अगम, जिसमें किसी तरह गमन ना हो सके, वह अगम है, जैसे हे प्रभु आपकी माया अगम है। दुर्लभ, जहाँ अत्यंत कठिनाई से जाया जा सके, वह मार्ग दुर्गम कहलाता है, जैसे खोह वाले मार्ग में बड़े दुर्गम होते हैं, उधर से होकर जाना आसान नहीं। आधी, आधी मानसिक पीड़ा की संज्ञा आधी है। व्याधि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं, जैसे आधी व्याधि में हमसे छुड़ाओ हितकारी। आनंद, साधारण लोक व्यवहार में आनंद हमारे मन में होने वाली वह प्रिय अनुभूति है, जिसमें हमारा मन संतुष्ट और सुखी होता है। कर्तव्य पालन, सद्कार्यों, परहित, लोक मंगल और इंद्रिय सुखों के भोग से आनंद की प्राप्ति होती है। अनंतः आत्मा का धर्म, वेदांत में आनंद आत्मा या ब्रह्मा के तीन गुणों या धर्मों से एक माना गया है। परमानंद, आनंद की चरम परिणति परमानंद है, जो आत्मा को परमात्मा में लीन होने पर प्राप्त होता है। अत्यानंद, अत्यानंद धार्मिक क्षेत्र में होने वाले शब्द है। यह आनंद के उस अतिरेक का सूचक है, जो मनुष्य का चिंतन तथा ध्यान मग्नता की पराकाष्ठता या लीन होने पर प्राप्त होता है। लोक जीवन में अत्यानंद उस विभोर अवस्था का सूचक है जब मनुष्य लीनता के कारण सुध बुध खो बैठाता है। प्रसन्नता प्रसन्नता मुख्यतः बाहरी पदार्थों से प्राप्त होती है। प्रसन्नता वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति उत्पन्न करती है। हर्ष और मोद ये दोनों आंतरिक सुख के द्योतक हैं। इनका प्रभाव अस्थायी और क्षणिक होता है। अपेक्षाकृत हर्ष सदा प्रगाढ़ और कुछ अधिक स्थायी होता है। इसका प्रयोग भी बहुमुखी है। प्रहर्ष हर्ष का बढ़ा चढ़ा रूप है। प्रहर्ष प्रहर्ष की मात्रा जब इतनी बढ़ जाए कि मनुष्य आपे से बाहर हो जाए तब उसे प्रहर्ष कहते हैं। इस सीमा में किंचित औचित्य का उल्लंघन भी क्षम्य है। उल्लास उल्लास अनुभूति की दृष्टि से क्षणिक तथा हल्का होता है। आनंद में प्रसन्नता से मनोवृत्तियां उन्मुख होती हैं। आहाद और मोद ये दोनों स्नायुविक उत्प्रेरक स्फूर्ति के भावों से युक्त है। उल्लास और प्रहर्ष में हृदय उमड़ आता है। उल्लास और आमोद सद्कार्यों से पैदा होते हैं और असद्कार्यों से भी। आशा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा और थोड़ा बहुत निश्चय। विश्वास अभीष्ट वस्तु या सहायता प्राप्त का पूर्ण निश्चय। आचार साधारण आचरण चाल चलन व्यवहार किसी विशेष व्यक्ति के साथ या सामाजिक जीवन में किया जाने वाला बर्ताव। आकार किसी वस्तु की वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई सम्मिलित हो। आकार है विशेषतः वस्तु या पदार्थ के संबंध में इस शब्द का प्रयोग होता है। रूप रूप में शारीरिक गठन आकार रंग और बनावट ध्वनित होता है। आशंका भविष्य में होने वाली किसी अमंगलक सूचक घटना की संभावना से मन में उत्पन्न होने वाला क्लेशपूर्ण भाव। शंका अमंगल सूचक संदेह मिश्रित भाव। आवृत्ति जिसका बार बार अभ्यास किया जाए। पुनरावृत्ति किए हुए काम को फिर करना। आतंक किसी के द्वारा अत्यधिक भयभीत किए जाने पर मन में समाया डर जिसमें चेतना जाती रहती है। त्रास किसी व्यक्ति के द्वारा सताए जाने वाले पर मिलने वाला कष्ट। आवेदन निवेदन प्रार्थना परत मनोगत भाव का प्रकाशन। जैसे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरना पड़ता है। प्रतिवेदन आख्या जांच पड़ताल के बाद तैयार किया गया विवरण रिपोर्ट। जैसे मुंबई में हुए दंगे की जांच के लिए गठित श्री कृष्ण आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दिया था। आविष्कार नवीनता के अन्वेषण की सफलता आविष्कार है। जैसे 10वीं सदी के अंतिम भाग में बैलून यानी गुब्बारे का आविष्कार हुआ था। अन्वेषण आविष्कार की सफलता के प्रयत्न का नाम अन्वेषण है। जैसे जगदीश चंद्र बसु सदैव अन्वेषण कार्य में लगे रहे। अनुसंधान लुप्त विषय के अन्वेषण का नाम अनुसंधान है। जैसे कल जो हमारी सभ्यता पर थे हस से अज्ञान से वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। ईर्ष्या जब बिना कारण किसी का उत्कर्ष देख हृदय में जलन उत्पन्न हो तब उसे ईर्ष्या कहते हैं। जैसे धनी से निर्धन ज्ञानी से अज्ञानी सदाचारी से व्यभाचारी निरंतर ईर्ष्या करता रहता है। द्वेष किसी व्यक्ति की प्रगति को देखकर हृदय में जो जलन पैदा होती है उसे द्वेष कहते हैं। जैसे मेरा पड़ोसी बहुत पढ़ाकू बनता है इस बार फेल हो जाए तो मजा आ जाए। उत्साह कार्य करने की उमंग का नाम उत्साह है। जैसे कार्य सिद्धि के लिए उत्साह की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए वर्णमाला की। उद्योग कार्य में लग पड़ने पढ़ने का नाम उद्योग है, जैसे मित्र उद्योग कर रहा हूँ मेरे हाथ में जो है। उद्यम उद्योग की स्थिरता उद्यम है, जैसे क्या उस विषय में आपका उद्यम चल रहा है। प्रयास सफलता के निकट उद्यम का नाम प्रयास है, जैसे भाई अल्पविराम प्रयास करते चलो सफलता निकट है। चेष्टा किसी कार्य का बहिरंग प्रयत्न चेष्टा है, जैसे अजी तुम चेष्टा करो कार्य निश्चित पूर्ण होगा। उद्दत तत्पर उद्यत उदंड। उदार ऊंचे दिल का श्रेष्ठ दानशील दाता, जैसे कर्ण एक अप्रीतम उदार योद्धा थे। उधार ऋण, जैसे तृप्ति ने तन्विता से 200 रुपये उधार के रूप में मांगे। उद्देश्य कि जिस काम या बात की ओर हमारे मन या विचार प्रवृत्ति या क्रियाशील किए जाएं उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाए, वही उद्देश्य है। अभिप्राय इसका शाब्दिक अर्थ किसी के पास जाना या पहुंचना होता है, पर इसका मुख्य अर्थ है वह विचार जो किसी को काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। इष्ट इष्ट वह है जिसकी चाह हो और जिसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए, जिसकी अभिलाषा से जिसके लिए प्रयत्न किया जाए वह इष्ट है। ध्येय वह है जिस पर ध्यान लगाकर प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए। ध्येय में ध्यान का भाव प्रमुख है और प्रयत्न का भाव गौण। लक्ष्य जिस पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए वह लक्ष्य है। लक्ष्य पर दृष्टि साधना से संबंध रखने वाले साधनों पर होती है। उद्देश्य और लक्ष्य में तात्विक अंतर है कि उद्देश्य हमारी इच्छा और विचार से संबंध रखता है, जबकि लक्ष्य सिद्धांतों या प्रयोजनों के आश्रित होता है। प्रयोजन प्रयोजन का शब्दार्थ उपयोग या काम में लेना है। प्रयोजन अभिप्राय का ही समान अर्थी है। अभिप्राय की अपेक्षा प्रयोजन में अधिक दृढ़ता और क्रियाशीलता का भाव निहित होता है। इसमें कार्य की उपयोगिता प्रति भी जागरूक रहती है। हेतु वह भाव या विचार है जो हमें किसी काम में प्रवृत्त करता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग अभिप्राय या प्रयोजन में अर्थ होता है। इसके मूल में कोई मनोविकार होता है जो कार्य बात के लिए उत्प्रेरित करता है। गौण रूप में हेतु उस काम या बात का सूचक है जिसके लिए क्रिया की जाती है। उत्साह उत्साह उमंग और जोश का भाव उत्साह कहलाता है। साहस वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य दृढ़तापूर्वक विपत्तियों का सामना करता है। उपकरण किसी कार्य को सिद्ध करने के साधन या सामग्री। उपादन किसी पदार्थ का निर्माण करने वाली सामग्री। उपज खेत या दिमाग की। उत्पत्ति जन्म आरंभ। ऋषि वेद मंत्रों के प्रकाशक को ऋषि कहते हैं। आध्यात्मिक और भौतिक तत्वों से साक्षात करने वाले यंत्र दृष्टता की संज्ञा ऋषि की है। मुनि जो तपस्वी मनन कार्य करते हैं वे मुनि कहलाते हैं। कठिन ये संपूर्ण विशेषण शारीरिक और मानसिक कार्यों से संबंधित है जिनकी पूर्ति के लिए विशेष श्रम करना पड़ता है। कठिन कठिन सहज का विपर्यय है। जो सहज ना हो वह कठिन है। जिस कार्य की पूर्णता में परिश्रम साहस और दूरदर्शिता की आवश्यकता हो वह हमारे लिए कठिन है। कठोर कठिन की तुलना में कठोर शब्द अपने कड़ेपन के कारण अपेक्षाकृत अधिक शर्म साध्य है। इसमें विकटता का भाव अधिक है। दुरारोह शब्दार्थ की दृष्टि से दुरारोह वह है जिस पर चढ़ना बहुत कठिन हो पर लाक्षणिक रूप से बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना दुरारोह है। दुर्गम वह है जिस तक पहुंचना या जिस पर गमन करना या चलना बहुत कठिन हो। दुर्लघ्य, दुर्लघ्य का शाब्दिक अर्थ है जो कठिनता से लांघकर पार किया जाए। लाक्षणिक अर्थ यह है कि ऐसी विकट विहीन बाधाएं और समस्याएं जिनको पार करना अत्यंत कठिन हो। दुस्तर, दुस्तर का शब्दार्थ है जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, पर साधारण बोलचाल के अर्थ में दुस्तर का प्रयोग ऐसे कार्य और बात के लिए होता है जो बहुत दूर तक विस्तृत तल के रूप में दृष्टिगत होती हो और जिसे पूरा करने के लिए परिश्रम आवश्यक हो। दुष्कर, दुष्कर वह है जिसे संपादित या संपान करना बहुत कठिन है। दुष्कर कार्य को पूरा करने के लिए इत्यतः परिश्रम करना आवश्यक है। दुस्साध्य, दुस्साध्य बहुत कुछ वही है जो दुष्कर हो, पर दुस्साध्य में कठिन साधना की आवश्यकता होती है। दुष्कर कार्य में के अर्थ में और दुस्साध्य साधना के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुर्बल, दुर्बल वह है जिसको वहन करना बहुत कठिन हो। इसमें विषय या वस्तु की गुरुता का भाव मुख्य है। कष्ट साध्य और श्रम साध्य दोनों शब्दों का अर्थ स्वतः स्पष्ट है। जिस कार्य को संपन्न करने में अधिक कष्ट उठाना पड़े वह कष्ट साध्य, और जिसे संपादित करने में अधिक श्रम या परिश्रम की आवश्यकता हो वह श्रम साध्य है। श्रांतक, जो कार्य संपन्न करने वाले को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थका दे वह श्रांतक कहलाता है। वही कार्य श्रांतक कहलाएगा जिसके लिए निरंतर परिश्रम करते व्यक्ति थक कर चूर हो जाए। इसका प्रयोग शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों के श्रम के लिए होता है। कुल, इसका अर्थ सब सारा पूरा होता है। वही कुल का अर्थ होता है वंश, जैसे उसने कुल काम कर लिए। रामचंद्र उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न हुए थे। कुल, इसका अर्थ तट किनारा होता है, जैसे शांत नदी का कुल संध्या के समय मनोहर लगता है। कुशल, कुशल वह कहलाता है जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का उत्तम प्रयोग करना जानता हो। इसमें योग्यता और कार्य संपादन संबंधी सतर्कता दोनों का अंतर्भाव होता है। दक्ष, दक्ष वह कहलाता है जो शारीरिक मुख्यतः हस्त कार्यों को अच्छी तरह करने की क्षमता रखता हो। निपुण, निपुण कुशल के ही वर्ग का शब्द है। भेद केवल इतना है कि निपुण होने के लिए अनुभव और अभ्यास के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक गुणों और विशेषताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। निष्णांत, निष्णांत वह व्यक्ति है जो अपने कार्य या विषय का ज्ञान प्राप्त करके पंडित बन चुका हो। पटु, पटुता में व्यवहारिकता अधिक होती है। पटु वह व्यक्ति होता है जो किसी की शिक्षा प्राप्त करके या यों ही व्यवहारिक दृष्टि से औरों की तुलना में आगे बढ़ गया हो। पारंगत, पारंगत की व्यक्ति पर तक अर्थ है जो पार कर चुका हो। लाक्षणिक भाव यह है कि जो किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पंडित बन चुका हो। यह शब्द निष्णांत का समानार्थक होता है। प्रवीण, प्रवीण अधिक कुशलता का द्योतक है। जो व्यक्ति किसी कार्य में असाधारण रूप में निपुणता प्राप्त कर चुका हो वह उस विषय में प्रवीण माना जाता है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ वह कहलाता है जिसने किसी विषय या उप विषय में अच्छा कौशल प्राप्त करके अपने लिए बहुत ऊंचा और विशिष्ट स्थान बना लिया हो। सुविज्ञ, सुविज्ञ अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से संगत है और बहुत प्रचलित है। सुविज्ञ का अर्थ है अच्छा जानकार, साधारणतः जो बहुत तरह की और बहुत सी बातों को जानता है सुविज्ञ कहलाता है। कोकनद, और उन कमल को कोकनद कहते हैं, जैसे कोकनद पहिए आनी के जुराए। पुंडरिक, श्वेत कमल को पुंडरिक कहते हैं, जैसे पुष्कर में पुंडरिक की शोभा ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश में नक्षत्र गण हो। जलज, साधारण सभी कमल का नाम जलज है। इंदिवर, श्याम कमल का नाम इंदिवर है। कृतज्ञ, अच्छे कार्य करने वाले का सम्मान करने वाले व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। जैसे हर भारतवासी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञहन, अच्छे कार्य करने वाले की उपेक्षा करने वाले कृतज्ञहन कहलाता है। जैसे जो व्यक्ति निष्पक्ष व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी की निष्ठा को स्वीकार नहीं करता, वह कृतज्ञहन है। इन विशेषणों का प्रयोग ऐसी बातों या विषयों के संबंध में होता है जो सर्वसाधारण की समझ में ना आती हो और ना आ सकती हो। इन बातों या विषयों को समझने के लिए विशेष अध्ययन, अनुशीलन और बुद्धि की आवश्यकता होती है। इन्हें समझने के लिए विशेष ज्ञान और प्रयत्न अपेक्षित है। गहन या मूढ़ उसे कहते हैं जो साधारण जन के लिए बोधगम्य न हो तथा जिसकी समझ करना कठिन हो। अचिंतनीय, अचिंतनीय वह है जो मनुष्य की चिंतन की सीमा में न आ सकता हो, जिसका चिंतन मनुष्य किसी प्रकार ही न कर सकता हो। इस पर हमारे लिए अचित्तीय है। अबोध्य, अबोध्य वह है जो हमारे लिए बोधगम्य ना हो, जो हमारी समझ में आ ही ना सकता हो। दुर्बोध्य, दुर्बोध्य वह है जो समझ में तो आ सकता हो पर समझने के लिए बहुत प्रयत्न और बुद्धि लगानी पड़ती हो। अव्याख्य, अव्याख्य का शब्दार्थ है जिसकी व्याख्या ना हो सके। व्यवहार में अव्याख्य शब्द का प्रयोग ऐसे कार्य या व्यवहार के प्रति होता है जो अपनी विलक्षणता के कारण हमारी समझ में ना आता हो। इस शब्द का प्रयोग जब कार्य या व्यवहार के प्रति होता है तब इसमें सहसा परिवर्तन, आश्चर्य और विलक्षणता का भी समावेश होता है। गुहा, सामान्यतः गुहा शब्द का प्रयोग धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है। इसका प्रयोग प्राय ऐसी बातों के लिए होता है जो साधारण व्यक्तियों से परे की हो। इसमें स्व उद्देश्य गुहाता लाई जाती है। इन पर प्रतीकात्मक, रहस्यात्मक, दार्शनिक प्रभाव रहता है। धार्मिक क्षेत्रों के गहन रहस्य, तंत्र मंत्रों के प्रयोग, विशिष्ट प्रकार की दीक्षाएं आदि गुहा होती हैं। गुहा बातों को समझने के लिए विशिष्ट ज्ञान, पात्रता, आध्यात्मिक अभियोगिता और दीक्षा की आवश्यकता होती है। ग्राम, जहाँ अधिक बस्ती ना हो, सबको स्वच्छता पूर्ण शुद्ध हवा मिल सके, वह ग्राम कहलाता है। कस्बा, ग्राम से बड़ा कस्बा कहलाता है। कस्बा का प्रबंध चेयरमैन और पंचों की सहायता से होता है। शहर, कस्बे से बड़ा शहर होता है। शहर का प्रबंध म्यूनिसिपैलिटी द्वारा होता है। बड़े बड़े शहरों का प्रबंध नगर निगम की सहायता से होता है। गुप्त, गुप्त वह है जो या तो स्वयं छुपा हो या जानबूझकर दूसरों के द्वारा छुपाया गया हो। गुप्त व्यापक प्रयुक्त शब्द है। गुप्त वस्तु विचार, परामर्श, मार्ग, संधि आदि हो सकती है। गुप्त रखने का उद्देश्य अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। अंतर्गत अथवा अंतर्भुक्त, अंतर्गत अथवा अंतर्भुक्त वही होता है जो किसी के साथ उसके अंग रूप में या अधीनस्थ भाव से मिला हो या मिला रहता हो। इसमें गोपन का भाव नहीं होता। अंतर्गत और अंतर्भुक्त में सूक्ष्म अंतर यह है कि अंतर्गत स्वाभाविक रूप में किसी के अंग का रूप होता है, जबकि अंतर्भुक्त किसी विशिष्ट क्रिया के द्वारा भी कर लिया जाता है या किसी कर्ता के प्रयत्न का फल भी हो सकता है। अंतःनिष्ठ, अंतःनिष्ठ वह कहलाता है जो किसी के अंतर्गत नियमित या स्वाभाविक रूप में रहते हुए भी गुप्त रहता है, और यह प्राय विशेष अवसरों या प्रसंगों में ही प्रकट होता है या सम्मुख आता है। यह किसी वस्तु में इतनी गहराई में स्थित रहता है कि प्राय उसका गुण, तत्व या स्वभाव बन जाता है। निहित, निहित का अर्थ है छुपा हुआ। निहित का प्रयोग ऐसी बातों या तत्वों के संबंध में होता है जो किसी तत्व या दूसरी चीज में रहते हैं पर स्वयं अपने को प्रकट नहीं करते। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर रहने पर ऊपर या सामने नहीं आती, तब तक वह निहित कहलाती है। उपयुक्त परिस्थितियों में वह प्रकट भी हो जाती है। सुप्त, सुप्त का शब्दार्थ है निद्रित, परंतु विशिष्ट अर्थ में सुप्त का प्रयोग उन बातों, तत्वों या क्रियाओं के क्षेत्र में होता है जब जो सक्रिय रहते हैं तब जागृत कहलाते हैं, और जब सक्रिय रहते हैं तब सुप्त कहलाते हैं। विवक्षित, विवक्षित का शाब्दिक अर्थ है जिसके कहने की इच्छा हो। अंतर्गर्भित कथन से विवक्षित का तात्पर्य ऐसे आशय से है जो सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष अभिधा से स्पष्ट नहीं होता, प्रत्युत संकेत, ध्वनि अथवा व्यंजना के रूप में समझा जाता है। घर, साधारण मनुष्य अपने रहने के लिए जो स्थान बनाता है वह घर कहलाता है। प्रसाद, राजा महाराजा लोग अपने रहने के लिए जो घर बनाते हैं वह राजमहल अथवा प्रसाद कहलाता है। कुटी, तपस्वी साधु अपने रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं वे कुटी, कुटीर आदि नामों से जाने जाते हैं। घर, घर निवास स्थान, जन्म स्थान, जैसे इस घर में रहते हुए मेरी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। मकान, रहने की जगह, जैसे इस मकान में कई लोग आए और गए। घोर, कठोरता, प्रगाढ़ता, सघनता आदि गुणों के अति का संकेत देने के लिए हमें घोर शब्द का प्रयोग करते हैं। घोर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु, भाव या कार्य के गुण अति की सीमा पर पहुँच कर विकराल रूप धारण कर ले, जैसे घोर अंधकार, घोर तपस्या, घोर पाप आदि। उग्र, घोर और उग्र में मूल अंतर यह है कि घोर में आतंक या भय का संचार करने का भाव नहीं रहता, जबकि उग्र में यह भाव प्रमुख रहता है। उग्र रूप क्रूर और भयानक आकृति का पर्याय है। उग्रता में हम भावानुकूल मुख भी बना लेते हैं। उत्कट, उत्कट का प्रयोग तीव्रता की चरम अवस्था का संकेत देने के लिए होता है। इस अवस्था में भावावेग इतना बढ़ जाता है कि उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जैसे उत्कट प्रेम, उत्कट इच्छा आदि। उद्यम, निरंकुश के साथ उद्दंड हो जाने का भाव व्यक्त करने के लिए उद्यम का प्रयोग होता है। चिंतनीय, विचारणीय, चिंतनीय शब्द चिंतन से बना है, इसका अर्थ है जो चिंतन का विषय हो। चिंतन में किसी तथ्य तक पहुंचने के लिए स्थितः मन की आवश्यकता पड़ती है। किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए सोच विचार करना पड़ता है, यही सोच विचार चिंतन कहलाता है। विचारणीय, विचारणीय चिंतनीय से कुछ हल्का शब्द है। विचारणीय में गहन अथवा विशेष विचारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह विचार अथवा कार्य कुछ ऐसा होता है जिसके हम प्राय अभ्यस्त होते हैं। कभी कभी विचारणीय विषय पर तत्काल मत स्थिर करना पड़ता है और हम सहज में मत निर्धारण कर लेते हैं, जिससे स्थितः मन और अधिक विचार करना पड़े। यह विचारणीय क्षेत्र से निकलकर चिंतनीय क्षेत्र में चला जाता है। जलद, जलद इसका अर्थ जल देने वाला अर्थात मेघ होता है। जलधि इसका अर्थ समुद्र होता है। जांच, हम अनुभव तुलना व्यवहार आदि के द्वारा किसी चीज की परख करते हैं। जांच एक प्रकार की परख या परीक्षण ही है। जांच जांचना क्रिया का भावात्मक रूप है। जांच के द्वारा किसी चीज की अच्छाइयाँ, उपयोगिता, दोषपूर्णता, न्यूनता आदि को देखा जाता है। देख, पूछ या मांग कर परीक्षण करना कि यह खरा है या खोटा, जांच कहलाता है। अनुसंधान, अनुसंधान का मूल अर्थ है किसी के पीछे लगकर उसका संधान या पता लगाना। किसी विषय की सूक्ष्म जांच अनुसंधान है। अनुसंधान ऐसी बातों का भी होता है जिसका बड़ा अंश अभी अंधकार में हो और जिसके संबंध में तथ्यों का पता लगाना शेष हो। पुलिस किसी अपराध या दुर्घटना की छानबीन करती है। किसी वस्तु के गूढ़ तत्वों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं और पुरातत्वता प्रागैतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान करते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण में किसी बात या वस्तु की खोज की इच्छा प्रधान होती है। अन्वेषण का मूल अर्थ होता है खोजना या ढूंढना। अपने विस्तृत अर्थ में किसी प्रसंग में नए तथ्यों या बातियों का पता लगाना या कुछ ढूंढ निकालने का प्रयत्न ही अन्वेषण है। अन्वेषण ऐसी अज्ञात वस्तुओं, स्थानों आदि का पता लगाना कहलाता है जो अब तक सामने ना आई हो या जिसके संबंध में बहुत कम तथ्य ज्ञान हो। गणवेशना, गणवेशना का मूल अर्थ है गो पाने की कामना, गो को ढूंढ निकालना। गवेषण हमारी सभ्यता के उस प्रारंभिक अवस्था का शब्द है जब गो को ही मुख्य संपत्ति होती थी। आरंभिक अवस्था में इस शब्द का प्रयोग भूली भटकी चोरी गई गो को ढूंढ निकालने के लिए होता था। अब यह शब्द अनुसंधान का वाचक है। किसी शास्त्रीय या वैज्ञानिक विषय के संबंध में गूढ़ रहस्य जानने के लिए अधिक समय तक चलती रहने वाली विचारपूर्ण जांच को गवेषणा कहते हैं। वास्तविक तथ्य या शुद्ध रूप का पता लगाना ही इसका उद्देश्य है। निरीक्षण, निरीक्षण शब्द का प्रयोग दो शब्दों के रूपों में होता है। प्रथम रूप में इस शब्द का प्रयोग किसी काम, चीज या बात को ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से देखना है कि उसके गुण दोष सामने आ जाएं और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति ना हो। दूसरे रूप में निरीक्षण का अर्थ मात्र ज्ञान अथवा परिचय प्राप्त करना अथवा देखना होता है। समीक्षा, समीक्षा का अर्थ है किसी बात या वस्तु के सभी अंगों और उपायों के गुण दोषों से पूर्ण अवगत होकर उनका विवेचन करना। साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में समीक्षा का शब्द प्रयोग इसी अर्थ में होता है। अरेक्षण, अरेक्षण एक विशिष्ट क्षेत्र का शब्द हो चुका है। इसका प्रयोग लेखा जोखा, बही खाता, आय व्यय विवरण आदि के संबंध में होता है। अंगरेक्षण के द्वारा आय व्यय का परीक्षण किया जाता है कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार हैं या नहीं और उनका विवरण शुद्ध और सत्य है या नहीं। सत्यापन, सत्यापन का मूल अर्थ किसी बात की सत्यता की परख करना है। किसी मूल लेख की प्रतिलिपि के अक्ष रस ठीक होने और उसकी सत्यता नियमों के अनुसार है या नहीं और उसका विवरण शुद्ध है और सत्य है या नहीं सत्यापन कहलाता है। शोध, शोध का शब्दार्थ है शुद्ध करने की क्रिया या भाव। मराठी में इस शब्द का प्रयोग गवेषणा के अर्थ में होता है। हिंदी में भी इसका प्रचलन गवेषणा के अर्थ में चल पड़ा है।